दिन भर एक जून शुक्रवार सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। भारत के कुछ राज्यों में किसानों का प्रदर्शन,
किसी से भीख मांगते।
एक जून से 10 जून तक सब्जी फल और दूध की शहरों में आपूर्ति रोकने का इरादा, बताएंगे आपको क्या है किसानों की मांगे। भ्रष्टाचार के एक मामले पर गिरी स्पेन की सरकार, करेंगे याद ध्यानमन चौक की उस घटना को जब चीन ने अपने ही लोगों पर बंदूकें तानी थी।
जब ये मार पड़ी तो एक बड़ा हजूम करीब 2-3 हजार लोगों का होगा वो हमारे होटल में लपका चला आया।
सब विस्तार से, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब समेत देश के कुछ अन्य राज्यों में आज से लेकर 10 जून तक किसानों ने गांव बंद करने का आह्वान किया है। इस आंदोलन में गांव से शहर की तरफ होने वाली सामग्री की आपूर्ति रोकने की बात कही जा रही है। राष्ट्रीय किसान महासंघ की अगुवाई में 100 से अधिक किसान संगठन इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। मुंबई के सिंधिया हाउस में आज शाम करीब 5 बजे आग लग गई। खबरों के मुताबिक सिंधिया हाउस की तीसरी और चौथी मंजिल पर आग लगी है। बताया जा रहा है कि इमारत में 4 से 5 लोग फंसे हो सकते हैं। इसी इमारत में इनकम टैक्स विभाग का दफ्तर भी है। स्पेन की संसद में प्रधानमंत्री मारियानो रखॉय को विश्वास मत हारने के बाद अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके साथ ही पेद्रो सांचेज अब स्पेन के नए प्रधानमंत्री होंगे। स्पेन के इतिहास में रखॉय पहले प्रधानमंत्री हैं जो संसद में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए। सोशलिस्ट पार्टी के नेता और देश के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे पेद्रो सांचेज ने विश्वास मत के बाद पत्रकारों से कहा कि वे अपने देश को प्रगति के पथ पर आगे लेकर जाएंगे। यूरोपियन यूनियन में विदेश नीति की प्रमुख फेडरिका मोगरिनी ने कहा है कि यूरोपीय संघ किसी तरह के ट्रेड वॉर को बढ़ावा नहीं देना चाहता, लेकिन अमरीका ने स्टील और एल्यूमिनियम के आयात पर नए शुल्क लगाकर इस तरफ अपने कदम जरूर बढ़ा दिए हैं। गुरुवार को ट्रंप प्रशासन ने घोषणा की थी कि वे कनाडा, मेक्सिको और यूरोपीय संघ की तरफ से आने वाले सामान पर नए प्रतिबंध लगा सकते हैं। ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन की ट्रेड कमिश्नर सेसिलिया माल्मस्ट्रॉम ने अमेरिका की इस घोषणा की कड़ी आलोचना की। सेसिलिया ने कहा,
This is very unfortunate. It is unfortunate because it will cause a lot of damage.
यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यह इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि इससे हमारी स्टील और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। यह इसलिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि अमेरिका आंतरिक सुरक्षा से जुड़े सेक्शन 232 का प्रयोग कर रहा है, जो बिल्कुल गलत है। इसके पीछे रक्षात्मक रुख अपनाने की मंशा छिपी हुई है। ये थे यूरोपियन यूनियन की ट्रेड कमिश्नर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जर्मनी के एक चिड़ियाघर से भागने वाले 5 खतरनाक जानवरों की तलाश पूरी हो गई है। चिड़ियाघर के अधिकारियों ने जानकारी दी थी कि 2 शेर, 2 बाघ और 1 तेंदुआ चिड़ियाघर से भाग गए थे। इसके अलावा 1 भालू भी चिड़ियाघर से फरार हो गया था, जिसे गोली मार दी गई थी। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सलाह दी थी कि जब तक सभी फरार जानवरों की तलाश पूरी नहीं हो जाती, तब तक वे अपने घरों में ही रहें। फ्रैंकफर्ट में AFP समाचार एजेंसी के एक पत्रकार माइकल फिट्ज़पैट्रिक ने बताया,
The 2 tigers, 2 lions and 1 jaguar that were on the loose have now been recaptured and are apparently
जो 2 बाघ, 2 शेर और 1 तेंदुआ चिड़ियाघर से भाग गए थे, उन्हें वापस पकड़ लिया गया है और चिड़ियाघर पहुंचा दिया गया है। एक दुखद समाचार है कि जिस भालू को गोली मारी गई थी, उसकी मौत हो गई है। फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि ये सभी जानवर चिड़ियाघर के इलाके से बाहर चले गए थे या नहीं, क्योंकि यह चिड़ियाघर बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है। ये थे फ्रैंकफर्ट में मौजूद एक पत्रकार के शब्द। चीन की पुलिस का कहना है कि उन्होंने 500 से अधिक लोगों को यांगजे नदी को प्रदूषित करने के जुर्म में हिरासत में लिया है। बताया गया है कि इन सभी लोगों को 150 अलग अलग मामलों के तहत इस साल के शुरुआती 5 महीनों में हिरासत में लिया गया। अधिकारियों के अनुसार हिरासत में लिए गए लोगों पर गैर कानूनी खनन करने और नदी को प्रदूषित करने के आरोप लगे थे। वोग अरेबिया नामक पत्रिका ने अपने उस फैसले का बचाव किया है जिसमें उन्होंने अपने कवर पेज पर सऊदी की राजकुमारी की कार चलाती हुई तस्वीर प्रकाशित की थी। पत्रिका ने सऊदी अरब में महिलाओं को ड्राइविंग करने की इजाजत मिलने के बाद यह कवर प्रकाशित किया था, लेकिन इस कवर पेज की इस बात के लिए आलोचना होने लगी कि इसमें उन महिलाओं को नहीं दिखाया गया जिन्होंने इस हक के लिए असली लड़ाई लड़ी थी। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं शाम की सभा दिन भर संदीप सोनी के साथ। भारत के कुछ राज्यों में किसानों ने आज से अपनी हड़ताल शुरू की है। किसानों का इरादा 10 जून तक हड़ताल करने का है। ये किसान मोटे तौर पर अपनी उपज का बेहतर दाम मांग रहे हैं। किसानों की मांगों में वो तमाम बातें शामिल हैं जिसकी स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की थी। उन सिफारिशों के बारे में हम आपको बताएंगे आगे। पहले सुनिए किसानों की कुछ आवाज़ें जो देश के अलग अलग हिस्सों में आज सुनाई पड़ी।
प्रतिशत सब्जी आई है।
सब्जी तो बेच रहे हैं, किसानों ने बंद करना, हमने थोड़ी बंद करना है।
पंजाब और महाराष्ट्र से आज कुछ इस तरह की तस्वीरें भी देखने को मिली जिनमें किसान सड़कों पर दूध बहा रहे थे। कुछ जगहों पर किसानों ने सब्जियों को भी सड़कों पर फेंका। किसानों की हड़ताल का आज पहला दिन था। पहले दिन इसका बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला। हड़ताली किसानों का कहना है कि वो 10 दिन तक अनाज और सब्जी वगैरह की आपूर्ति शहरों में नहीं होने देंगे। किसानों के एक संगठन ने दावा किया है कि पिछले 15 साल में 3.5 लाख से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली ने किसान नेता शिव कुमार कक्काजी से बात की, आप भी सुनिए।
पूना, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश से समाचार आ रहे हैं कि किसानों ने इसमें शामिल हो गए हैं। हमारे 130 संगठन राष्ट्रीय स्तर के थे, वो तो खैर शामिल है ही है, पर अभी तक केवल आरएसएस के संगठन को छोड़कर भारत के सभी संगठन इसमें सहयोग कर रहे हैं। पिछले बार चूंकि गोली चल गई थी और अप्रिय घटनाएं घटी थी, तो हमने ये तय किया था कि हम गांव बंद करेंगे और गांव में रहेंगे, गांव से हम शहर ही नहीं जाएंगे। शहर वालों से ये प्रार्थना की है कि भाई 1-2 दिन के लिए आप हमारे गांव आइए, उचित मूल्य पर आपको हम दूध फल सब्जी देंगे।
शर्मा जी, लेकिन ये बताइए कि किसानों को भी तो तकलीफ होगी। बहुत सारे आपके ऐसे किसान हैं जो रोज बेचते हैं और रोज अपना राशन खरीदते हैं और खाते हैं।
देखिए, 15 वर्षों में 46-47 हजार किसान अकेले मध्य प्रदेश में सुसाइड कर चुके। अभी ये 2 घंटे पहले एक किसान भोपाल में सुसाइड कर लिया। तो ये 2 दिन अभी किसान की सब्जी फिक जाएगी, वो गरीब को दे देगा या सहन कर लेगा, पर ये लाशें गिर रही है किसानों की, जिस पर सरकार संवेदनहीन हो चुकी है, वो बड़ा है कि ये बड़ा है, दोनों ही कष्ट है हमारे लिए।
लेकिन ये बताइए शर्मा साहब कि इसमें एक अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति जिसमें करीब करीब 193 किसान जो है वो यूनियन शामिल हैं, वो आपके साथ शामिल नहीं हुए हैं, तो इसका कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। एक तरह से किसानों के अंदर ही किसी न किसी तरह का मतभेद उत्पन्न हो जाएगा या सरकार उसका फायदा उठा सकती है?
हमारा जो राष्ट्रीय किसान महासंघ है, ये किसानों के गैर राजनीतिक संगठनों का समूह है, हम नॉन पॉलिटिकल रहेंगे।
लेकिन शिवकुमार शर्मा जी, आप भी तो एक समय एक संगठन से जुड़े रहे हैं, आरएसएस से आपका सीधा संबंध रहा है।
देखिए, मेरे बारे में आपको जानकारी पूरी नहीं है, मैं डॉक्टर लोहिया का फॉलोवर रहा हूँ शुरू से। 11 साल में भारतीय किसान संघ जो एनजीओ में रजिस्टर्ड है उसका मैं प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ। और जब मैंने किसानों की लड़ाई बहुत ईमानदारी से लड़ी, सरकार भाजपा की बनी, तब मेरे पर AK-47 से गोलियां चलाई गई, मेरे पर 1.5 दर्जन मुकदमे लाए गए और उसके बाद मुझे उन्होंने उस संगठन से, मैं जेल में था और कह दिया वो निकाल दिए गए हैं।
ये थे किसान नेता शिव कुमार कक्का जी। तो दावा कर रहे थे उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल आइए अब आपको सुनवाते हैं स्वामीनाथन आयोग की वो सिफारिशें जो किसानों की बेहतरी के लिए की गई थी, जिन्हें मोदी सरकार मानने से बहुत पहले मना कर चुकी है।
फसल उत्पादन मूल्य से 50% ज्यादा दाम किसानों को मिले।
किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज कम दामों में मुहैया कराए जाएं।
गांवों में किसानों की मदद के लिए विलेज नॉलेज सेंटर या ज्ञान चौपाल बनाया जाए।
महिला किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएं।
किसानों के लिए कृषि जोखिम फंड बनाया जाए ताकि प्राकृतिक आपदाओं के आने पर किसानों को मदद मिल सके।
सरप्लस और इस्तेमाल नहीं हो रही जमीन के टुकड़ों का वितरण किया जाए।
खेतिहर जमीन और वन भूमि को गैर कृषि उद्देश्य के लिए कॉर्पोरेट को न दिया जाए।
फसल बीमा की सुविधा पूरे देश में हर फसल के लिए मिले।
खेती के लिए कर्ज की व्यवस्था हर गरीब और जरूरतमंद तक पहुंचे।
सरकार की मदद से किसानों को दिए जाने वाले कर्ज पर ब्याज दर कम करके 4% किया जाए।
कर्ज की वसूली में राहत, प्राकृतिक आपदा या संकट से जूझ रहे इलाकों में ब्याज से राहत, हालात सामान्य होने तक जारी रहें।
लगातार प्राकृतिक आपदाओं की सूरत में किसान को मदद पहुंचाने के लिए एक एग्रीकल्चर रिस्क फंड का गठन किया जाए।
28% भारतीय परिवार गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। आयोग ने ऐसे लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा का इंतजाम करने की सिफारिश भी की है।
स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के बारे में बता रही थी इंदु पांडे और नवीन नेगी।
बीबीसी इंडिया बोल।
7 जून को नागपुर में होने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के एक कार्यक्रम में देश के पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रणब मुखर्जी मुख्य अतिथि की हैसियत से शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के भीतर और बाहर भी प्रणब मुखर्जी के इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। क्या आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने वाली कांग्रेस को आरएसएस के प्रति अपने रवैये पर फिर से सोचना चाहिए? यही है इस बार बीबीसी इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार 2 जून को मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
ऐसा बहुत कम देखने सुनने में आता है जब भ्रष्टाचार के एक मामले की वजह से पूरी सरकार गिर जाती है। स्पेन में भी ऐसा ही हुआ है, जहां प्रधानमंत्री मारियानो रखॉय संसद में अविश्वास प्रस्ताव हार गए हैं और उनकी सरकार गिर गई है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए गुरप्रीत कौर से।
स्पेन की संसद उस वक्त तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी जब स्पेन के प्रधानमंत्री मारियानो रखॉय अविश्वास प्रस्ताव हार गए। अविश्वास प्रस्ताव हारने के साथ ही मारियानो रखॉय ने प्रधानमंत्री की कुर्सी गंवा दी है। अब समाजवादी नेता पेड्रो सांचेस स्पेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। रखॉय की पार्टी के भ्रष्टाचार स्कैंडल में फंसने के बाद पेड्रो सांचेस ने ही उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। सांचेस के प्रस्ताव के समर्थन में कुल 180 वोट पड़े, जबकि इस प्रस्ताव के खिलाफ 169 सांसदों ने वोट किया। वोटिंग के दौरान एक सदस्य अनुपस्थित भी रहा। आधुनिक स्पेन के इतिहास में रखॉय ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव में मात खाई है। हारने के बाद मारियानो रखॉय ने कहा,
एक लोकतांत्रिक व्यक्ति होने के नाते मैं मतदान के नतीजों को स्वीकार करता हूं। स्पेन की सरकार का प्रधानमंत्री बनना मेरे लिए सम्मान की बात रही है। मुझे गर्व है कि स्पेन मुझे जिस हालत में मिला था मैंने इसे उससे बेहतर बनाया है।
कंजर्वेटिव पीपुल्स पार्टी का नेतृत्व कर रहे रखॉय 2011 से स्पेन के प्रधानमंत्री थे। जिस मामले की वजह से मारियानो रखॉय को प्रधानमंत्री की कुर्सी खोनी पड़ी है वो मामला पिछले हफ्ते उस वक्त चर्चा में आया जब पीपुल्स पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष लुइस बार्सिनस को 33 साल जेल की सजा सुनाई गई। मैड्रिड की हाईकोर्ट ने लुइस को रिश्वत लेने, मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स से जुड़े अपराधों के लिए दोषी ठहराया था। ये मामला साल 1999 से 2005 के बीच गोपनीय तरीके से फंड उगाही के लिए अभियान चलाए जाने से जुड़ा था, लेकिन प्रधानमंत्री मारियानो रखॉय घोटाले में अपनी पार्टी के शामिल होने से इनकार करते रहे हैं। रखॉय की हार के बाद सांचेस ने कहा कि अपने लोकतंत्र के इतिहास में हम एक नए पन्ने पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने स्पेन की जनता को ये भरोसा दिलाया कि वो नए प्रधानमंत्री के तौर पर देश को और आगे ले जाएंगे।
Soy consciente de la responsabilidad que asumo del momento político tan complejo que vive nuestro país.
मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री का पद बेहद जिम्मेदारी भरा है। देश के सामने पेश आ रही चुनौतियों से मैं पूरी संवेदनशीलता से निपटूंगा। हम देश में बदलाव लेकर आएंगे।
स्पेन के 46 साल के नए प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेस 2014 तक कोई बड़े नेता नहीं थे, लेकिन वह 2014 में स्पेनिश सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख बने। इस अर्थशास्त्री और पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी ने पार्टी को एक करने और समाजवादियों को वापस सत्ता में लाने के वादे के साथ पार्टी चुनाव जीता था। बाद में 2015 और 2016 में उन्हें 2 बार चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इस कारण उन्हें पार्टी प्रमुख पद छोड़ना पड़ा, लेकिन कुछ महीने बाद फिर से उनकी पार्टी के सदस्यों ने उन पर विश्वास जताया और वह उसके प्रमुख बने।
भ्रष्टाचार के एक मामले में स्पेन की सरकार गिर गई है, रिपोर्ट सुना रही थी गुरप्रीत कौर। श्रोताओं, आज शुक्रवार है और हर शुक्रवार को रहता है आपको विवेचना का इंतजार। विवेचना में आज बात चीन के थ्यानमन चौक पर 4 जून 1989 को हुई उस घटना की, जब चीन की सेना ने चीन के ही नागरिकों पर बंदूकें तान दी थीं। इस कार्रवाई में कथित रूप से सैकड़ों चीनी नागरिक मारे गए थे। क्या था पूरा मामला, बता रहे हैं रेहान फजल विवेचना में।
जून 1989 चीन की राजधानी बीजिंग के मशहूर तियानानमेन स्क्वायर में कई हफ्तों से दसियों हजार लोग दिन रात प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांग थी जमहूरियत और साथ साथ सामाजिक न्याय भी। प्रदर्शन में सबसे आगे थे बीजिंग विश्वविद्यालय के छात्र, उनमें से एक थी डियान वे लियांग।
I was a student at Beijing University, which was what we call the cradle of China.
मैं बीजिंग विश्वविद्यालय की छात्र थी, जिसे चीन के जनतांत्रिक आंदोलन का उद्गम स्थल कहा जा सकता है।
छात्र न तो सरकार गिराने की मांग कर रहे थे और न ही कम्युनिस्ट पार्टी को समाप्त करने की। इस आंदोलन के पीछे कई कारण थे। सीवी रंगनाथन उस समय चीन में भारत के राजदूत थे।
लेबर भी ज्वाइन हुआ और उनका प्रोटेस्ट 3-4 वजह से हुआ। एक उधर 89 का पहले, एक साल के पहले काफी इन्फ्लेशन हो रहा था। दूसरा, स्टूडेंट्स का ये कंप्लेंट था कि जब वो पास हो गए जॉब्स वो खुद नहीं पार्टी और स्टेट एलोकेट कर रहा था। तीसरा, करप्शन, पार्टी करप्शन का। तो ये 3-4 मामले के वो तो काफी आंदोलन ज्यादा हो गया, मगर ये क्रैकडाउन आने ही वाला था, क्योंकि वो जब उस टाइम में पार्टी सेक्रेटरी था एक जाओजी यांग कर, उनको निकला गया क्योंकि उन्होंने डेमोन्स्ट्रेटर्स से नेगोशिएट करना चाहता था और नेगोशिएट कर लिए वो, उन्होंने तियानमेन स्क्वायर भी गया था। ये सब उन्होंने समझा कि पार्टी का बिल्कुल खिलाफ है। वो उस टाइम सबसे बड़ा आदमी था डंग शाओपिंग, जिन्होंने रिफॉर्म्स भी स्टार्ट किया, मगर डंग शाओपिंग का एक प्रिंसिपल था कि पार्टी सुप्रीमेसी, पार्टी का बिल्कुल शासन, उसको डिफाई नहीं कर सकता है। तो उन्होंने समझा कि भाई डेमोन्स्ट्रेटर्स नहीं निकल रहे हैं, और जब तक तो फॉरेन में भी बहुत, पर्टिकुलरली अमेरिका में बहुत इसमें इंटरेस्ट हो गया और काफी फॉरेन करेस्पॉन्डेंट्स भी थे, तो उन्होंने समझा कि ये डेमोन्स्ट्रेशन अभी बंद करना चाहिए, तो उन्होंने क्रैकडाउन किया।
बीबीसी ने उस प्रदर्शन में भाग ले चुकी डियान वे लियांग से पूछा कि क्या इस आंदोलन में कूदने से पहले आपने अपने माता पिता से सलाह ली थी?
When you're 20 years old, you don't discuss with your parents. And we all went because...
जब आप 20 साल के होते हैं तो आप इस तरह की बातें अपने माता पिता से नहीं करते। हमने इसे इसलिए शुरू किया क्योंकि चीन की सिर्फ 1% आबादी ही विश्वविद्यालय तक जा सकती थी। जब सुविधाएं दी जाती हैं तो उसके साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। हमारी जिम्मेदारी थी देश को बेहतर बनाना और उसके लिए त्याग करना।
हाउ जांग जंग की उम्र उस समय 18 साल थी। हमने उनसे पूछा कि सरकार द्वारा आंदोलन में शामिल न होने की चेतावनी दिए जाने के बावजूद आपने स्कूल छोड़कर तियानानमेन स्क्वायर जाने का फैसला क्यों किया?
Once the teachers and start to block, you know, classrooms and saying nobody can go out and...
जब अध्यापकों ने क्लासरूम बंद करके कहा कि कोई भी बाहर नहीं जा सकता, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं और मेरे 5 दोस्त उठे। मुझे नहीं पता कि हम में हिम्मत कहां से आई। हमने एक स्वर में कहा, हम बाहर जा रहे हैं।
जब जंग और उनके दोस्त तियानानमेन स्क्वायर पहुंचे तो वहां हजारों लोग गाना गाते हुए लाल झंडे हिला रहे थे। इसके अलावा वहां बहुत से लोग भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए थे।
There were camps for the hunger strikers, and there were security. There were many layers of security.
भूख हड़ताल से पहले हमने कई शिविर लगाए थे। वहाँ पर कई स्तरों की सुरक्षा व्यवस्था थी। मैं भी उसमें काम कर रही थी। वहाँ पर और भी काम थे, जैसे अब बीमार लोगों को अस्पताल ले जाना।
आपने अपने आप को मुश्किल में डाल दिया था। आपको डर नहीं लगा?
Yes, well, the night before June 4th, when the tanks moved in. Yes, I have to say I was very, very scared to
बिल्कुल,
do the night shift.
4 जून से एक रात पहले जब टैंक आए, मैं कहूंगी कि रात की शिफ्ट करते हुए मुझे बहुत डर लग रहा था।
Yeah, 2 o'clock in the morning when it was all dark and we held hands, we sung.
2 बजे तड़के बिल्कुल अंधेरा था। हमने एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे थे और हम सब गाना गा रहे थे बिना रुके हुए। इनमें से कुछ माओ युग के गीत थे और कुछ हांगकांग के पॉप गाने भी। हम ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमें खामोशी बिल्कुल पसंद नहीं थी।
जून की शुरुआत में ही छात्रों को लग गया था कि अब टकराव को नहीं रोका जा सकता।
By that time, we've already seen a number of platoons surfacing within Beijing.
उस समय तक हम देख पा रहे थे कि बीजिंग में बहुत से प्लाटूने प्रवेश कर रही थी। पहले जब वो आते थे तो छात्र उन्हें रोकते थे और वो वापस चले जाते थे। इस बार उनके साथ पहली बार टैंक आ रहे थे और हमें लग रहा था कि इस बार मामला गंभीर है।
डियान ने सुबह 4 बजे अपनी शिफ्ट समाप्त हो जाने के बाद तियानानमेन स्क्वायर छोड़ दिया। सेना का क्रैकडाउन शाम 7 बजे शुरू हुआ।
7 o'clock, that's when the central television started to broadcast this ominous message repeatedly for quite a few hours. Oh citizens,
7 बजे के आसपास टीवी पर लगातार संदेश आने लगे, सभी नागरिक अपने अपने घरों को चले जाएं। सेना सिटी सेंटर को खाली कराने के लिए आ रही है। अगर आप इस आदेश का पालन नहीं करेंगे तो परिणामों के लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। टेलीविजन और रेडियो पर इस उद्घोषणा के बाद इलाके की बिजली काट दी गई। मैं नहीं समझता कि हम इससे डर गए। ये जरूर था कि हमें पता नहीं था कि हम क्या करने जा रहे हैं। चारों तरफ अफरा तफरी थी, लेकिन लोगों में अभी भी जोश था। लेकिन तभी चीजें तेजी से होने लगी।
बीजिंग के बीचों बीच चारों तरफ से गोलियां चलने की आवाजें आने लगी। सेना की बख्तरबंद गाड़ियों ने स्क्वायर में लगे हजारों टेंटों को कुचल दिया। लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे और सैनिकों की लारियों से उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई जाने लगी। कई लॉरियों ने न सिर्फ छात्रों द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को कुचला, बल्कि कई छात्र भी उनकी चपेट में आ गए।
Troops have been firing indiscriminately, but still there are thousands of people on the streets who will not move back.
इस घटना से 2 दिन पहले भारतीय लेखकों का एक दल चीन पहुंचा था और इत्तेफाक से उन्हें एक ऐसे होटल में ठहराया गया था जो तियानानमेन स्क्वायर से बिल्कुल सटा हुआ था। भारतीय लेखकों के उस दल में मशहूर लेखिका और प्रसार भारती की पूर्व अध्यक्ष मणाल पांडे भी थी।
हमारा होटल जो था वो कुछ ही मीटर की दूरी पर था स्क्वायर की, लेकिन ऐसी जगह बना था कि स्क्वायर डायरेक्टली नहीं दिखता था। लेकिन जब ये मार पड़ी तो एक बड़ा हजूम, करीब 2-3 हज़ार लोगों का होगा, वो हमारे होटल में लपका चला आया और वो 2-3 लोगों को चोटें भी लगी थी, एक दूसरे को सहारा दिया था, बदहवासी की हालत में थे। उसके बाद वो आ करके परिसर में बैठ गए और पीछे गेट बंद कर दिया गया कि ये लोग दोबारा ना जा सकें। और बेहद सकपकाए हुए, बेहद डरे हुए लोग थे। हम लोग जब पहुँचे, बस उसी वक्त अचानक एक मोहतरमा टेलीविज़न पर आई और उसमें 2-3 भाषाओं में अनाउंस हुआ कि टेलीविज़न अब बंद किया जा रहा है और अगली सूचना का इंतज़ार। उसके बाद एकदम पटकताल न टेलीविज़न। अच्छा, उस ज़माने में ये मोबाइल फ़ोन भी नहीं थे, इंटरनेट भी नहीं था, तो कहीं से किसी तरह की खबर पाने का उस तरह का आसरा भी नहीं था। और बीजिंग में तब इतनी गाड़ियां भी नहीं थी, सड़कें वीरान पड़ी हुई थी, भाएं भाएं करती हुई, हर जगह सिपाही, हर जगह वही हेलमेट्स दिखाई देती थी। बल्कि मुझे याद है, हम लोगों का 8वीं या 9वीं मंजिल पर कमरा था, तो मैं देखती थी सुबह सुबह मेरे ही जैसे कुछ कुत्ता प्रेमी लोग अपने कुत्तों को टहलाने के लिए लाते थे, झक मार के उनको आना ही पड़ता था, लेकिन वो जल्दी से जल्दी कुत्ते को लेकर के फिर लपक लेते थे।
छिटपुट गोलीबारी कई दिनों तक चलती रही, यहां तक कि इस घटना के कुछ दिनों बाद जब भारतीय राजदूत सीवी रंगनाथन दिल्ली में संयुक्त सचिव सतीश नाम्बियार से टेलीफोन पर बात कर रहे थे तो पीछे से गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी।
जब मैं नाम्बियार से बात कर रहा था कि ऐसा ऐसा हो रहा है, उसी टाइम हमारा दूतावास का सामने एक ये पीएलए कंटिजेंट और शूटिंग भी आवाज था, मगर उनके 3-4 दिन बाद में भी ऐसे रैंडम फायरिंग हो रहा था वो आर्मी से, तो वो तो काफी खतरनाक सिचुएशन था फॉरेनर्स के लिए। तो काफी एम्बेसी ने और हम भी उसमें जुड़े थे, हमने सब तय किया कि जो उतने जरूरत नहीं है एम्बेसी चलाने के लिए, वाइफ चिल्ड्रन उनको सब वापस भेजा गया।
भारतीय लेखकों के दल को उस होटल में 15 दिनों तक रहना पड़ा। इस बीच मृणाल पांडे ने होटल के पिछले दरवाजे से निकलकर कई चीनी लोगों से बात की।
जब हम लोग पीछे के दरवाजे से, चोर दरवाजे से निकले ढकते छिपते, तो हम लोगों ने देखा कि रास्ते में पेड़ों पर बाकायदा नेल्स से लिस्टें ठोकी गई थी, जिसमें कि तमाम भ्रष्ट जितने भी लीडरान थे पार्टी के, उनके नाम और उनके बैंक अकाउंट जो हांगकांग में थे, उनके खातों के नंबर सहित टंगे हुए थे। लेकिन तब तक ये साफ हो चुका था कि बहुत सख्ती से इनसे बरता जाएगा। तो स्टूडेंट से और उनके पेरेंट्स से जो बातचीत हुई, तो उसमें उनसे हमको लगा कि पहला सबसे अधिक गुस्सा तो ये था करप्शन को लेकर। उनको लगता था कि इन्होंने एक इकोनॉमिक नया प्रोग्राम डेंग ने जो शुरू कर दिया था कि बिल्ली काली हो सफ़ेद हो चूहे पकड़े तो हमारे लिए वही काफ़ी है, खुद शुरू किया। और इन लोगों को ये था कि इनके बेटों ने और इन लोगों ने बहुत जम के पैसा बनाया है, बाहर के बैंकों में किया है, और यहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनका लगातार अवमूल्यन हुआ है और उन लोगों को कोई भी छूट नहीं दी जाती है। लिहाजा वो अगर अपने बच्चों को पढ़ा के इंटेलेक्चुअल बनने को प्रेरित करते हैं तो ये तय है कि उनकी आमदनी ज़ीरो रहेगी और बहुत ही लो सोशल स्टेटस रहेगा। जबकि जो नाई हैं या टैक्सी ड्राइवर हैं, टूरिस्ट आने लगे थे तब तक चीन में बड़े पैमाने पर, अचानक ये जो बिल्कुल छोटे स्तर के लगभग अर्ध साक्षर लोग थे, इनकी तो कमाई 10 गुना 20 गुना बढ़ने लगी थी। और इंटेलेक्चुअल्स को लगातार गोभी की खेती के लिए भेजा जा रहा था दंड के रूप में। इसको लेके इन लोगों में, प्रोफेसर्स में और उनके बच्चों में काफ़ी गुस्सा था। और ये भी एक गौरतलब चीज़ है कि वो वन फैमिली नॉर्म तब तक पूरी तामीर के बाद रंग दिखाने लगा था। तो ये जिन बच्चों को चोट लगी थी वो छात्र अपने माँ बाप की इकलौती संतान थे, तो आप सोच सकते हैं कि माँ बाप में कितना गुस्सा था। 2-3 लड़कों ने हमसे कहा कि हम देखते हैं कि बगल के बारबर के लड़का हमारी यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़कियों को डेट पर ले जाता है और हमारे बाप इतने बड़े प्रोफेसर हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं और हमको कोई लड़की घास नहीं डालती। तो एक ये भी रीज़न था, यूथ की जो एनर्जी थी, यूथ की जो एस्पिरेशंस थी, उनको लग रहा था कि वो नहीं भरपाई हो रही है।
आज तक लोगों को पता नहीं है कि तियानानमेन स्क्वायर में उस दिन कितने लोग मारे गए थे। अनुमान अलग अलग हैं, कई 100 से लेकर कई हजार के बीच। उसके बाद से चीन में जन आंदोलन ने कभी सिर नहीं उठाया। बहुत से छात्र नेताओं को देश छोड़ना पड़ा। डियान वे लियांग आज एक उपन्यासकार हैं और हाउ जांग जंग एक पत्रकार हैं। दोनों इस समय लंदन में रह रहे हैं। रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
रेहान फजल की विवेचना के बाद खेल की खबरों के लिए सुमिरन प्रीत कौर स्टूडियो में आ चुकी हैं।
जी, और क्रिकेट से शुरुआत करें संदीप जी।
बिल्कुल।
तो फिलहाल चल रहा है दूसरा टेस्ट मैच हेडिंगली में पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच। अब पाकिस्तान जो है वो पहला मुकाबला अपने नाम कर चुकी है, क्योंकि पहला मुकाबला लॉर्ड्स में हुआ जहां पाकिस्तान ने जीत दर्ज की 9 विकेट से, और अब इंग्लैंड कोशिश कर रही है कि किसी तरह वापसी करे, अब
बराबरी पर आ जाए।
बिल्कुल, और 2 ही मुकाबले हैं इस सीरीज में। और जहां तक परफॉर्मेंस की बात है तो आज पाकिस्तान के खिलाड़ियों का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। पाकिस्तान ने टॉस जीता लेकिन जो बल्लेबाज हैं वो कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए। वहीं दूसरी तरफ जो स्टुअर्ट ब्रॉड हैं और जेम्स एंडरसन हैं इंग्लैंड के, उन्होंने गेंदबाजी में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और अब बात करते हैं
फ्रेंच ओपन की।
बिल्कुल, स्पेन के वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी रफेल नदाल जो हैं वो तीसरे राउंड में पहुंच गए हैं और उनका मुकाबला होगा फ्रांस के रिचर्ड गैस्केट के साथ राउंड ऑफ 32 में। ये मुकाबला कल है। वहीं मां बनने के बाद सेरेना विलियम्स का ये पहला ग्रैंड स्लैम होगा जहां उनका मुकाबला होगा जूलिया जॉर्जेस के साथ।
काफी दमदार शॉट लगा रही हैं अभी भी वो।
जी बिल्कुल, और वो कह रही हैं कि इसके बाद जब मैं खेलूं तो और अच्छा खेलूं।
बहुत शुक्रिया सुमिरनप्रीत कौर, खेल की खबरें बता रही थी। और चलते चलते खास खास खबरें एक बार फिर सुनते हैं नवीन नेगी से।
बीबीसी समाचार। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब समेत देश के कुछ अन्य राज्यों में आज से लेकर 10 जून तक किसानों ने गांव बंद करने का आंदोलन शुरू किया है। गांव से शहरों को होने वाली सामग्रियों की आपूर्ति रोकी जाएगी इस आंदोलन में। मुंबई के सिंधिया हाउस में आज शाम करीब 5 बजे आग लग गई। खबरों के मुताबिक सिंधिया हाउस की 3री और 4थी मंजिल में आग लगी है। स्पेन की संसद में प्रधानमंत्री मारियानो रखॉय को विश्वास मत हारने के बाद अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब सोशलिस्ट पार्टी के नेता पेद्रो सांचेज स्पेन के नए प्रधानमंत्री होंगे। चीन की पुलिस का कहना है कि उन्होंने 500 से अधिक लोगों को यांगत्ज़े नदी को प्रदूषित करने के जुर्म में हिरासत में लिया है। वोग अरेबिया नामक पत्रिका ने अपने उस फैसले का बचाव किया है जिसमें उन्होंने अपने कवर पेज पर सऊदी की राजकुमारी की कार चलाती हुई तस्वीर प्रकाशित की थी। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे कपिल देव सिंह और फेसबुक के जरिए हमें आप तक पहुंचाया ब्रजेश मिश्रा ने। अगला प्रसारण नमस्कार भारत, भारतीय समय अनुसार, समय जानते हैं आप, सुबह 6:30 बजे। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।